ओम शांति, ओम शांति। तो आज की मुरली हम सभी ने सुनी। मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने बड़े नशे की बात कही। क्या कहा बाबा ने? तुम ही क्या हो? अपने सामने बाबा को लाओ और बाबा आपको बोल रहे हैं, तुम ही बाबा को प्रिय हो। सारे संसार में बहुत आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं में से आप सबसे ज्यादा बाबा को प्रिय लगे। क्यों? क्योंकि कौन प्रिय लगता है? सोचो, आपके बच्चे, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे ही प्रिय हैं, लेकिन एक आज्ञाकारी है तो आज्ञाकारी ज्यादा प्रिय लगेगा ना। तो बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें सुधारने की श्रीमत देते हैं और उस श्रीमत पर चलकर तुम अपने आप को पवित्र बनाते हो। तो अब इस बात के ऊपर चिंतन चलना चाहिए, चिंतन करना है कि हम बाबा को प्रिय हैं क्योंकि हम आज्ञाकारी हैं, हम उसके श्रीमत पर चलते हैं, इसलिए बाबा को प्रिय हैं। मनमत पर चलेंगे तो बाबा को प्रिय लगेंगे? नहीं लगेंगे। आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा तो आपको प्रिय लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो जितना उसकी हम बात मानते हैं अर्थात उसकी श्रीमत पर चलते हैं, तो उतना ही उसको हम प्रिय लगेंगे। तो आप सोचिए, जिसको सारी दुनिया याद करती है, वो किसको याद करता है? रोज याद प्यार देता है ना। तो बाबा को हम, आपका ज्यादा प्यार है या बाबा का ज्यादा प्यार है? बाबा का प्यार है सचमुच, है ना। एक बार बाबा ने तो कहा, तुम बच्चों का प्यार है, लेकिन बाबा हमारा सम्मान बढ़ाता है, प्यार तो उसका है। हम कितनी गलतियां करते हैं, भूले करते हैं, लेकिन सदा ही रोज क्या कहता है मुरली की शुरुआत में, कौन सा अक्षर? मीठे बच्चे। देखो, हम हैं, अगर हम दो बार समझाएंगे, चार बार समझाएंगे, बच्चा बात नहीं मानेगा तो पांचवी बार क्या करेंगे? अनुभव है ना। एक थप्पड़ जड़ देंगे, तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है क्या? समझ में नहीं आता। और बाबा कितने सालों से हमें मीठे बच्चे बोल बोल करके मीठा बना देता है। तो बाबा, भगवान को हम प्रिय आ गए, भगवान को हम पसंद आ गए। सारे संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से भगवान को हम प्रिय लगे। बड़े बड़े धर्म नेता, राजनेता, अभिनेता, साइंटिस्ट, वो नहीं पसंद आए, लेकिन आप पसंद आए। क्यों आप पसंद आए? क्योंकि आप उसकी श्रीमत पर चल करके अपने जीवन को पवित्र बनाया। पवित्र बच्चे ही बाबा को सबसे प्रिय लगते हैं। बाबा के महावाक्य, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति ही बाबा को सबसे प्रिय स्थिति है। तो जितनी हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनती जाएगी, उतना हम बाबा को प्रिय लगेंगे। अब इसके ऊपर चिंतन करके लिख लेंगे कि कौन से बच्चे बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय लगेंगे, इसकी लिस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। आज की मुरली के आधार से चिंतन करके लिखेंगे। फिर आगे बाबा ने क्या कहा प्रश्न में? विश्व में शांति की स्थापना कब और कैसे होती है? कैसे होती है? महाभारत लड़ाई के बाद ही शांति की स्थापना होती है, और उसके लिए तुम तैयारी करते हो। कौन सी तैयारी करते हो? हाँ, कर्मातीत बनने की तैयारी। कर्मातीत बनने की बाबा ने कहा मेहनत करते हो। और दूसरी बात बाबा ने क्या कहा? सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान का स्मरण करके पावन बनते हो। तो कर्मातीत और संपूर्ण पावन, ये दो बातें, तब शांति की स्थापना होती है, तब सारे विश्व में सुख शांति आ जाती है। लेकिन उसके पहले महाभारत, अभी तो महाभारत, घर घर में महाभारत है ना, कोई एक महाभारत की बात नहीं है, घर घर में ही महाभारत। हाँ, लेकिन हम बच्चे स्वयं के अंदर शांति ला करके विश्व में शांति स्थापन करनी है तो पहले अपने अंदर हम देखें हमारे अंदर शांति। एक बार मुझे याद है कि दादी जानकी जी क्लास करा रही थी, तो दादी ने कहा हम अपने आप को अभी तक 90% नहीं जानते। तो हम लोगों ने सोचा कि 90% नहीं जानते माना क्या, हम अपने स्वमान में नहीं रहते। लेकिन दादी ने बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई, कहा देखो आपके सामने कोई आता है, गुस्सा करता है, तेज आवाज में बोलता है, तो आपकी स्थिति उस समय कैसे हो जाती है? आप अशांत होते हो या चलो अच्छा गुस्सा नहीं आप नहीं करते हो, लेकिन अंदर में अशांति आती है या नहीं आती है? आती है। तो हमने अपने आप को जाना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, है ना। दादी ने कहा रोज हम मुरली में सुनते हैं, है ना, बाबा कहते तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, लेकिन जिस समय कोई प्रैक्टिकल घटना घटती है तो समय हम शांत स्वरूप रहते हैं, प्रेम स्वरूप रहते हैं? तो अपने को जानना माना उस स्वरूप में स्थित रहना, अपने स्वधर्म में स्थित रहना। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था बनानी है। बार बार ये शब्द हम मुरली में सुनते हैं, कर्मातीत कर्मातीत कर्मातीत, अर्थात हाँ हर प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त, हर प्रकार के आकर्षणों से मुक्त, है ना। कोई भी आकर्षण, और सबसे बड़ा आकर्षण है कर्मेंद्रियों का आकर्षण, देहभान का आकर्षण। तो जब हम हर प्रकार के आकर्षणों से बंधनों से मुक्त रहेंगे तब कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। लेकिन कौन मुक्त रहेगा? जब हम एक के आकर्षण में होंगे, तभी तो हम सब आकर्षणों, सबसे बड़ा आकर्षण वाला तो हमें बाबा मिला है, भगवान मिला है। वो मिलने के बाद अगर हमें और कोई आकर्षण खींचता है, हा? देखो कई बार हम ये बात सुनते हैं कि जिस भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी घर बार छोड़ देते थे, राजाएं अपना राजमहल छोड़ के जाते थे कि भगवान की एक झलक दिखाई दी जाए, वो हमें मिला है। और उस को प्राप्त करने के बाद भी यदि हमारी बुद्धि कोई आकर्षण में जाती है, कोई चीज खींचता है, तो क्या कहेंगे? तो अंदर से क्या निकलना चाहिए? ब्रह्मा बाबा का गीत। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश हुए तो बाबा के मुख से कौन सा गीत निकला? पाना था सो पा लिया, या अभी कुछ बाकी है? पा लिया, वो मिला है ना भगवान। और उसके मिलने के बाद भी हम, ये क्या है, एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करनी है कि ए आत्मा, संसार की सबसे बड़ी प्राप्ति प्राप्त होने के बाद भी यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टता नहीं आई तो कब आएगी? भगवान को पाने के बाद तुम संतुष्ट नहीं हुए तो कब होंगे? तो जब हम अपने आप से बातें करेंगे एकांत में बैठ करके, इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी हम कोई ना कोई हमें आकर्षण खींच रहा है। तो एक बात ये नोट कर लें कि अगर कोई चीज में बार बार हमारी बुद्धि जाती है तो बाबा ने कहा है कि अंत में वही चीज याद आएगी और आप फेल हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई देहधारी के आकर्षण की बात, कोई साधन है, सुविधा है, खान पान है, गहने, कोई भी चीज, अगर किसी चीज में बार बार बुद्धि जा रही है तो उस चीज को हम अपने सामने लाएं और अपने आप को समझाएं कि ऐ आत्मा, यही चीज अंत में तुम्हें याद आएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि इससे अपना बुद्धि योग निकाल लो। तो कर्मातीत अवस्था और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान का स्मरण कर स्वयं को पावन बनाना, माना स्वदर्शन करना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखना, अपने पांचों स्वरूपों के श्रेष्ठ भाग है ना, वो देखना, आदि में हम क्या थे और मध्य में, अच्छा आदि में देवता थे और मध्य में क्या, हाँ पूज्य, अपना पुजारी रूप नहीं देखना है ना, हम पूज्य स्वरूप में मंदिर में, हाँ हजारों भक्त आत्माएं हमारे पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। देखो अभी हमें पता है ना, बाद में तो भूल जाएंगे, बाद में पता रहेगा हम आज साधारण नाम रूप में बैठे हैं और हमारे मंदिरों में भक्तों की लाइन लगी है। मुझे एक स्टोरी याद आती है आदरणीय जगदीश भाई जी की, वो क्लास कराया करते थे, कहा देखो, वो अपना अनुभव सुनाते हुए कहते थे कि आरती उतारते ना मंदिर में ओम जय जगदीश अरे, तो जगदीश भाई कहते मैं पीछे जाकर खड़ा होकर के मुस्कुराता रहता था, है ना, और मैं ये सोचता था कि देखो बेचारे कितने भोले भगत हैं कि जिस जगदीश की ये आरती उतार रहे हैं इनको पता नहीं कि वो जगदीश पीछे आकर के खड़ा है। तो आप सब भी तो हैं, कोई देवी देवताएं है ना, कोई आसमान के ऊपर या जमीन के नीचे तो नहीं, हमारी भी मूर्तियों की तो पूजा हो रही है ना। तो कभी कभी देखना चाहिए कि देखो आज मैं साधारण नाम रूप में और उधर हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा हो रही है। और कभी किसी से अगर झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो उसको भी उसी रूप में देखना कि इसके भी मंदिर में हम बहुत कई बार गया, ये भी हमारे मंदिर में आया, हम भी इसके मंदिर में गए, जिसके मंदिर में आज तक मैं जाता रहा और आज वो चैतन्य में मिला है तो उसे हम मन मुटाव कर रहे हैं, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं, तो अंदर में ब्रेक लगेगा ना। तो कहने का भाव अपने पांचों स्वरूपों को देखना और उस श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहना। और आगे बाबा ने क्या कहा, पवित्रता के ऊपर बाबा ने एक बात कही, हा? बाबा ने कहा शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, इस बात की है ना, ब्रह्मा बाप के दाढ़ी की लाज रखो। क्या लाज रखना है, बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनोगे तो बाबा क्या करेंगे, तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक बना देंगे, स्वर्ग का राज्य भाग दे देंगे। तो पवित्रता देखो कितनी दिल को लगने वाली बात, लौकिक में भी बोलते हैं ना दाढ़ी की लाज रखो, तो आज बाबा हाँ भगवान बोल रहा है कि बच्चे तुम मेरी एक श्रीमत मानोगे तो पूरा 5000 वर्ष तक मैं तुम्हारी मानता रहूंगा और मैं तुम्हें 2500 वर्ष के लिए पवित्र दुनिया का मालिक बना दूंगा, तुम्हारे हाथ में स्वर्ग का राज्य भाग दे दूंगा। कौन गारंटी कर रहा है, स्वयं भगवान गारंटी कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। और बाबा ने क्या कहा, याद करो आज बाबा ने क्या कहा, क्या कहा, ठीक बात, बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए क्या कहा बाबा ने, कैसे बनेगी बुद्धि पवित्र स्वच्छ, हाँ, सोने का पात्र कैसे बनेगी? हाँ, ज्ञान को स्वयं में धारण कर, पवित्र बन। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। जब हमारी बुद्धि सोने का बर्तन होगी, जितनी पवित्र होगी उतना ज्ञान रतन ठहर सकेगा। तो ज्ञान का सिमरण, ज्ञान का चिंतन, कई बार हम कहते हैं ज्ञान का चिंतन हमारा चलता ही नहीं है। है कोई जो जिसका ज्ञान का चिंतन नहीं चलता हो? चिंतन करने की तो विशेषता हर एक के अंदर है। अभी आपको कोई बोल दे बुद्धू कहीं का पागल, तो चिंतन चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तो हम चलाना भी नहीं चाहेंगे तो भी चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। तो व्यर्थ, आप सोचिए जिन बातों को हम चिंतन नहीं करना चाह रहे हैं वो चल रहा है, और जिसे हम चाहते हैं वो नहीं चल रहा है। तो चिंतन करने की कला तो है, लेकिन व्यर्थ निगेटिव को चिंतन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन जो समर्थ बातें हैं, है ना, ज्ञान की बातें हैं, उसका हमें चिंतन करना पड़ता है। तो उस चिंतन से हमारी शक्तियां बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा योग अच्छा लगे, आप एक नियम बनाओ, योग में बैठते हो 5 मिनट पहले मुरली रिवाइज कर लो और फिर योग करो, देखो आपको कितना अच्छा योग लगेगा। आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति आपकी बनती जाएगी। और जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो हमें ज्ञान सुनाने की, हाँ, हमें इच्छा करती, ज्ञान सुनाने की कला भी आ जाती है। अच्छा, और बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, हाँ ना? कुक्कड़ ज्ञानी माना दूसरों को तो सुनाते हैं लेकिन स्वयं के जीवन में ना होना, स्वयं की धारणा में ना होना। अगर हमारे अंदर नहीं है और दूसरों को सुनाते हैं तो क्या कहेंगे? कुक्कड़ ज्ञानी। और बाबा ने क्या कहा? डायरेक्ट क्या करना है? सब कुछ बाबा के आगे अर्पण कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। तो क्या अर्पण करना है? चिंतन करेंगे। आज तक तो हम गाते आए ना कि हे भगवान, ये सब कुछ तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। कहां पर गाया? मंदिर में। और घर आते सब भूल जाते, है ना, सब कुछ मेरा। तो यहां हम केवल गाना नहीं है, लेकिन जब हम अर्पित करके चलेंगे, भगवान को समर्पण करके चलेंगे, तन समर्पित करेंगे, तो तन हमारा कैसा बन जाएगा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। मन को समर्पित करेंगे तो मन कैसा होगा? सुखों से भरपूर। इतने बुद्धिमान समझदार बन जाएंगे कि हमें भविष्य में जज वजीर आदि रखने की जरूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। और धन लगाएंगे तो स्वर्ग का भाग्य ही मिल जाएगा, और तीनों लगाएंगे तो तीनों प्राप्ति। तो इस समय हम एक करते हैं और एक का पदम गुना मिलता है। तो हम दे नहीं रहे हैं लेकिन हम ले रहे हैं, ये सोचे। आज की मुरली का गीत क्या था? आज अंधेरे में, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो इंसान, सारी दुनिया अंधेरे में है और हम बच्चे, हम अंधेरे में हैं? हम तो उजेरे में आ गए ना। बाबा ने हमें कहा अंधियारा से कहा ले आया? उंजियारा में ले आया, सोझरा में। किस लिए लाया? किस लिए लाया? दूसरों को भी निकालने के लिए। ऐसे नहीं कि दूसरे अंधेरे में भले पड़े रहे हैं, हम तो उजियारे में आ गए, दूसरे से क्या लेना देना। बाबा ने उजियारे में हमें इसलिए लाया, प्रकाश में इसलिए लाया कि जो आपके, जो बेचारे अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, वो क्या लगते हैं आपके? आपके ही भाई बहने हैं। तो जो माया के दलदल में फंसे हुए हैं, अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, उनको उससे निकालने के लिए लाया है। बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास रखा, आस रखा कि यही मेरे बच्चे मेरे कार्य को पूरा करेंगे। तो करेंगे ना उसके कार्य को पूरा, है ना? तो सभी आत्माओं को अज्ञान अंधकार से निकालना ये हमारा कर्तव्य है। आज का वरदान क्या था? हर शक्ति को कार में लगा करके वृद्धि करने वाले क्या भव? धनवान और समझदार भव। तो सबसे बड़े समझदार हैं वो हैं जो शक्तियों को कार में लगाते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी कहते हैं कि शक्ति को तो हम कार में लगाना चाहते हैं लेकिन शक्तियां आती ही नहीं है। जैसे मानो कोई गुस्सा कर रहा है, उस समय आपको कौन सी शक्ति की जरूरत है? सहन शक्ति की। तो हम बाबा को लाना देते, बाबा हम भी गुस्सा कर लिए, बाद में याद आया कि सहन शक्ति को लाना था, कार में लगाना था, सहन शक्ति तो आई नहीं। तो क्यों नहीं आती? उसके बाबा ने तीन कारण बताए हैं। बाबा ने तो कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, बाप बच्चे बाप को बुलाए और बाप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप का आना माना वो शक्ति का अनुभव होना, और फिर भी अगर अनुभव नहीं होता तो बाबा ने उसके तीन कारण बताए हैं। पहला कारण, स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते। मालिक बनकर के ऑर्डर करेंगे तो शक्तियां हाजिर होगी। दूसरा कारण, जो श्रीमत के आगे जी हजूर करते हैं, शक्तियां भी उनके आगे जी हजूर करते हैं। हम कहें बाबा हमारी सारी बात माने और हम बाबा की एक भी बात ना माने तो चलेगा ऐसा? हम जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जितना हम बाबा की सुनेंगे, उतना शक्तियां हमारी सुनेंगी। हम कहते हैं आजकल के बच्चे बड़े खराब हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, हम उसकी कितना सुनते हैं? जितना हम उसकी सुनेंगे, परिवार वाले भी आपकी सुनेंगे, सारे लोग आपकी सुनेंगे। तो शक्तियां उसी की बात मानती है जो श्रीमत के आगे। और तीसरी बात, जो अपने समय को सफल करते हैं, शक्तियां उसी के आगे हाजिर होती है। तो आज बाबा ने यही कहा कि जितना शक्तियों को कार्य में लगाएंगे उतना शक्तियां क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जितना बढ़ेगी उतना हम दूसरों को भी दे सकेंगे, दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे, दूसरों को भी अनुभूति करा सकेंगे शक्तियों की। स्लोगन क्या था आज का स्लोगन? शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लें तो माला माल बन जाएंगे। कहां से मिलता है शुद्ध संकल्प? रोज की मुरली से। तो कैसे खजाना बनेगा? जितना रोज की मुरली की पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो वो खजाना हमारा अपना बन जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा, फिर जितना तुम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, समर्थ संकल्पों में रहेंगे, शुद्ध संकल्पों में रहेंगे, उतना संकल्प शक्ति का चमत्कार देखेंगे। चमत्कार देखेंगे माना जो सोचेंगे वही होगा। आज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे संकल्पों में कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ओम शांति।